1950 कराची एयरपोर्ट किमारी, बहुत बड़ा स्टीमर जिसमें सारा यज्ञ भारत आ रहा था। सरस्वती उस स्टीमर का नाम था और जब वहां से निकले वहां पर जो मुसलमान लोग थे उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये क्यों जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे और उन्होंने गीत गाया था, चले जा सभी यज्ञवत्सों के लिए। जब वो स्टीमर चालू हुआ, 3 दिन की यात्रा, लगभग 3,000 लोग उसमें थे, डूबने लगा। जो फर्स्ट फ्लोर था लगभग डूब रहा था, सेकंड और थर्ड फ्लोर ठीक था। जो कप्तान था वो छोटी छोटी नाव में बैठने के लिए सभी यात्रियों को कह रहा था और उस समय मुंबई के मोहिनी दीदी जी ने अनुभव सुनाया। मोहिनी दीदी जी पुष्पा शांता दीदी के साथ थे, दादी जी के साथ, महाराष्ट्र इंचार्ज, पहले दादी जानकी, फिर पुष्पा शांता दादी, फिर ब्रजेंद्र दादी, वर्तमान संतोष दीदी जी। तो नाव जब डूब रहा था वो स्टीमर, तो ब्रह्मा बाबा उस कप्तान के पास गए और वो जो कंट्रोल रूम था वहां पर, और उसको कहने लगे कि नाव को उस ओर ले जाओ। तो वो कहने लगा उस ओर बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा पानी है, पर बाबा ने कहा बच्चे ले जाओ बस, और नाव को उस ओर ले गए और वहां जाते ही नाव ऊपर हो गई, सारा पानी नीचे। ये एक छोटा सा उदाहरण है कैसे भगवान ने इस यज्ञ की शुरुआत से लेकर अब तक रक्षा की। केवल यज्ञ की नहीं, यज्ञ में आए हुए एक एक यज्ञ वत्स की। सारे शिप में लगभग 3,000 लोग थे, उनको सब कहने लगे अब मिठाइयां दो। तो दादियां जो थी उन्होंने वे पर्स जो उनके पास था वो सबको दिया। कहने का भाव, जितना बाबा से अटूट संबंध होगा उतना ही उसकी मदद, उसकी छत्र छाया, उसका प्रेम हमें अनुभव होगा। बाबा सर्व संबंधी है, प्रीत की रीत निभाने वाला है, और यह ऐसा संबंध है जिसमें कभी भी धोखा नहीं, जिसमें कभी भी दुख नहीं, अविनाशी संबंध है। संसार के जो संबंध है कैसे है? खोटे हैं, दुखदाई है, स्वार्थी है, धोखे वाले हैं। पर भगवान का जो संबंध है प्यार भरा संबंध है, अविनाशी संबंध है। क्या हमने भी उसके साथ ऐसा अविनाशी संबंध जोड़ा है जो हर समय हमें अनुभव हो कि उसकी मदद कहीं ना कहीं से हर परिस्थिति में सूक्ष्म रूप से हम तक पहुंच रही है, या फिर हर परिस्थिति, हर विघ्न जो आ रहा है उसमें ये भाव कि इससे मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, सुखी जीवन का रहस्य, सुखी जीवन किसे कहा जाता है? जीवन में खुशी, सुख या सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इसके विषय में बाबा ने बहुत सारी बातें की है और कंपेयर किया है, तुलना की है लौकिक जीवन से। संसार में भी सुखी होने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है, और वही सारी बातों की चर्चा यहां पर भी बाबा ने कही। संसार में लोग ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, महान जासूस शेरलॉक होल्म्स के लिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी केस जो उसके पास आता था, कोई भी रहस्यमय, कोई खून या कोई कुछ, वो उसे हल कर देता था। एक बार हंसी की बात है कि वो और उसका मित्र वॉटसन किसी जंगल में गए और वहां कैंप कर रहे थे। वॉटसन शेरलॉक होल्म्स को पूछता है कि आप इतने कुशाग्र बुद्धि कैसे हैं? आप कैसे जो भी केस आपके पास आता है मिनटों में हल कर देते हो? शेरलॉक होल्म्स उसको कहता है कि मैं जो भी बात सामने आती है उसमें तर्क लगाता हूं, तुरंत स्वीकार नहीं करता हूं, तर्क लगाता हूं, ये ऐसा क्यों, अगर ये ऐसा तो फिर वैसा क्यों, अगर वैसा तो इसका कारण क्या है। वॉटसन कहता है आज से मैं भी तर्क लगाऊंगा, और वो दोनों सो जाते हैं उस कैंप में, उस टेंट में। आधी रात को शेरलॉक होल्म्स का की आंखें खुलती है और वो आसमान की तरफ देखता है और अपने मित्र वॉटसन को उठाता है और कहता है उठो देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। वॉटसन कहता है आसमान। वो कहता है जरा सोच के देखो। वॉटसन को लगता है अभी मुझे वो सारे फॉर्मूले अप्लाई करना है, ऐसे ही कोई चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए, तर्क लगाना है मुझे। वो कहता है गला साफ करके और बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए, एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस संसार में असंख्य तारामंडल है, सूरज चांद सितारे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, वो थोड़ा सा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहा है, ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय ग्रह नक्षत्र शनि राहु केतु सब ठीक ठाक चल रहे हैं। समय विज्ञान से देखा जाए तो सुबह के 2 बज रहे हैं। और आगे वो कहता है, यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो एक परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि रची, सूरज चांद सितारे, उसके सामने मनुष्य कितना शूद्र है। और वो कहता है कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय आसमान साफ है और कल धूप रहेगी। और फिर वो वाटसन शेरलॉक होल्म्स की तरफ देखता है और कहता है, कैसी रही? शेरलॉक होल्म्स उसको कहता है, अरे मूर्ख, पहले ये सोचो हमारी छत हमारा टेंट कोई चुरा ले गया है, इसलिए तो आसमान दिखाई दे रहा है। हमारा जो टेंट था कोई तो चुरा कर ले गया है। और तुम तर्क ही करते बैठे, सुबह की अव्यक्त वाणी विज्ञान वैज्ञानिक क्या करते बैठे, खोज ही करते बैठे, तर्क ही लगाते बैठते, अभी सूरज कभी चांद कभी ये तो कभी वो, खोजते खोजते खो गए। टेंट चोरी हो गया वो तो देखा ही नहीं, और आसमान पर चर्चा चालू है, सूरज में क्या है, कितना दूरी पर है, चंद्रमा में क्या है, और शास्त्रवादी क्या करने में खो गए, शास्त्रार्थ के चक्कर में खो गए। सत्य क्या, सत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, ब्रह्म क्या, ब्रह्म पर कैसे जाए, ब्रह्म में कैसे स्थित हुए हो जाए हुआ जाए, ब्रह्म ब्रह्म करते करते ब्रह्म में खो गए। तो वैज्ञानिक खो गए, शास्त्रवादी खो गए, महानात्माएं, महानात्माएं किसमें खो गई, भ्रांतियों में, आत्मा परमात्मा को मिला दिया, तर्क तर्क करने लगे, और क्या किया, सर्वव्यापी कह दिया, भ्रांति में खो गए, और राजनीतिक कुर्सी, कुर्सी के चक्कर में, और अज्ञानी आत्माएं तिनके को सहारा समझ लिया, जो आधार है नहीं जीवन का उसी को आधार समझ रहे, संसार की प्राप्तियां, संसार के सुख, संसार के वैभव, वस्तु पदार्थ संबंध बस इसी में लगे हैं। तो सारे के सारे, पांचों के पांचों खो गए, तर्क ही करते रहे, और हमने क्या कर दिया, वो ब्रह्म में है और हम ब्रह्मा के कदमों में चल रहे हैं, कदम पर कदम रखकर चलकर पद्मों की कमाई कर रहे हैं, और वो किस में चल रहे, ब्रह्म में, हम किस में चल रहे, ब्रह्मा के कदमों पे कदम है हमारे। तो संसार की हालत बाबा ने बताई और ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सका जहां बाबा का ज्ञान है, या फिर जहां विज्ञान की सीमाएं पूरी होती है वहां से यह ज्ञान चालू होता है, और विज्ञान अपूर्ण है। इसलिए वैज्ञानिक खोजे चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे फायदे बहुत है पर नुकसान भी उतना ही है अगर गलत हाथों में आ गया तो। और हम जिस ज्ञान में है, जिस ज्ञान को हमने समझा है, रोज जिस ज्ञान को हम सुनते हैं, वो इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है कि संसार इस ज्ञान को अभी तक पूरा समझा ही नहीं है। रोज की मुरली में आता है, ये तुम समझते हो वो नहीं समझते, और यहां पर भी कोई कोई ऐसे है, कौन, परसों की मुरली भुट्टू, जो बाप के तो बने हैं पर बाप को जानते नहीं है, तर्क ही लगा रहे हैं, और टेंट उड़ गया है। तो वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, पहुंच पाए, खोज ही खोज कर रहे, और आगे और आगे और आगे क्या होगा, नए नए मिशन्स निर्माण कर रहे, वहां पहुंचेंगे यहां पहुंचेंगे, उसी में खुश है। राजनीति पर कितनी बड़ी टीका की है बाबा ने, राज सत्ता इस संसार में वो नहीं कर सकती जो अध्यात्म सत्ता कर सकती है। यहां तक कि महान आत्माएं, बहुत बड़ी कैटेगरी है महान आत्माओं की अर्थात धर्म सत्ता, वो भी शक्तिहीन है इस समय, क्योंकि उनके पास भी आध्यात्मिक भ्रांतियां है, सत्य को उन्होंने भी नहीं जाना है। तीन बड़ी बड़ी सत्ताएं संसार की, विज्ञान, धर्म और राजसत्ता, नहीं पहुंच पाए हैं। और बचे हैं फिर अज्ञानी लोग, उनका तो क्या कहें, जब ये तीन ही नहीं पहुंच पाए तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। और फिर है फिलोसोफर्स, शास्त्रवादी, शास्त्र को जानने वाले, शास्त्रार्थ करते हैं और सिद्ध करते हैं हम राइट है या तुम राइट, बस इसी में संसार लगा हुआ है। तो ऐसी संसार की परिस्थिति, ऐसी संसार की हालत में भगवान ने आज सुबह की साकार मुरली तो अव्यक्त वाणी दो प्रकार के बच्चे देखे। कौन कौन से? सारे विश्व में एक तो वो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं और एक वो जो लौकिक आत्माएं संसार की। जो लौकिक वाले हैं उनके पास भी प्राप्तियां है, परंतु वो प्राप्ति कैसी है? प्राप्ति है और तुरंत अप्राप्ति है। दूसरा अल्पकाल की प्राप्ति है। तीसरा मेहनत करके प्राप्त की हुई प्राप्ति है। चौथा उनके पास जो प्राप्ति है वो कमाई के लिए मेहनत करते हैं, कमाई है उनकी पर उसमें भी बहुत मेहनत है। और पांचवा वो चल रहे हैं और तुम उड़ रहे हो। ये तुम में और उनमें अंतर है। तुम्हारे हर कदम में पदम है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो, तुम विशेष आत्माएं हो। सारी प्राप्तियां तुम्हारे पास है, उनके पास सारी नहीं है, थोड़ी है और वो भी अल्पकाल की है। आज प्राप्ति है तो कल अप्राप्ति है, आज सफलता है तो कल असफलता है। तुम्हारे तो हर कदम में पदम है, तुम निरंतर उड़ने वाले हो। तुम मेहनत नहीं, तुमने बाप को कैसे अपना बना लिया? बाप के प्यार ने तुम, बाप को प्यार करते करते बाबा को तुमने अपना बना लिया है, प्यार से ही उसको अपना बना लिया है। वो लोग मेहनत, तुम मोहब्बत, वो चल रहे तुम उड़ रहे हो। उनकी वो कमाई तुम्हारी पद्मों की कमाई, उनकी अल्पकालीन प्राप्ति तुम्हारी सदाकाल की प्राप्ति, अविनाशी प्राप्ति, सुखमयी प्राप्ति, उनकी आज प्राप्ति कल अप्राप्ति। ये पांच अंतर बताए इन दो आत्माओं में, एक संसार की आत्माएं और एक ब्राह्मण आत्माएं। और खुशी का आधार क्या है लौकिक में भी? संबंध, स्वभाव, संपत्ति और संपर्क, 4S। संबंध, स्वभाव, संपत्ति अर्थात धन या कमाई, और चौथा संपर्क, श्रेष्ठ संपर्क, श्रेष्ठ कर्म। बाबा ने कहा ये चार आधार है, उधर भी सुख के लिए और इधर भी सुख के लिए, सारे संसार के ये आधार है। सबसे पहला बताया संबंध। कैसा संबंध है उधर का? दुख देता है। संबंध ही बंधन बन गया है। और युगलों से मुलाकात में बाबा ने कहा जरा भी बंधन क्या कर देता है? फंसा देता है। जरा भी बंधन, इसलिए उड़ते रहो, स्वतंत्र रहो, निर्बंधन रहो, नीचे आओ ही नहीं, नीचे आए कि गए, निरंतर उड़ो, ऊपर 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 रहो। संसार के सारे संबंध फंसाने वाले, लौकिकता है उसमें, और हमारे जीवन के संबंध अलौकिक है, एक बाप से है, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें कोई धोखा नहीं है। और जितने लौकिक संबंधों का विस्तार करेंगे उतना ही दुख बढ़ेगा। यहां तक कि अलौकिक जीवन में भी अगर लौकिकता के संबंध निर्माण किए तो भी दुख होगा। जहां लौकिकता है वहां दुख है, जहां अलौकिकता है वहां सुख है। जहां नीचे है वहां दुख है, जहां ऊपर है स्थिति वहां सुख है। स्वतंत्र जो है वो सुखी है, परतंत्र जो है वो दुखी है। निर्बंधन जो है वो सुखी है, कल परसों की साकार मानी थी। सेवा कौन कर सकते हैं? जो निर्बंधन है वही सेवा कर सकते हैं। जिनको माया के भूतों ने पकड़ रखा है वो सेवा नहीं कर सकते। नाक पकड़ रखी है वो सेवा नहीं कर सकते। जो जितना निर्बंधन है, जो जितना न्यारा है, जो जितना अनासक्त है, वो उतनी अधिक सेवा कर सकता है, क्योंकि मन फिर मुक्त है। और जो बंधनों में फंसा है वो कैसे सेवा करेगा? नहीं कर सकता है सेवा। और सेवा के लिए अभी अभी शांतिवन में मुरली चली, तीन प्रकार की सेवा तुम्हें एक साथ करनी है। कौन कौन सी? मन से अनुभव कराना है, वाणी से भगवान के ज्ञान के खजाने का परिचय देना है, और तुम्हारे चलन और चेहरे से संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव कराओ। कितनी बड़ी बात कह दी, कुछ बोल नहीं रहे मुख से, केवल चलन और चेहरे से संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव कराओ। कोई देखे तो लगे ये तपस्वी आत्मा है, अल्लाह लोक है। जैसे वो मुस्लिम लोग बाकी हिंदुओं को तो उन्होंने जाने दिया, पर इनको नहीं छोड़ रहे थे। वो कहते थे तुम यहीं रुक जाओ, हमने क्या गलती की, क्यों हमको छोड़ के जा रहे हो, तुम यहीं रुको। अल्लाह अल्लाह करने लगे। तो सबसे पहला है संबंध। तो हमारी खुशी का आधार है बाबा से गहरा संबंध, कितना हम उसके नजदीक हैं। कितना हम उससे बातें करते रहते हैं, कितना हम बार बार उसको शुक्रिया देते रहते हैं, कितना हम उससे जुड़े रहते हैं दिन भर। केवल अमृत वेला नहीं, केवल नुमा शाम के योग में नहीं, केवल इंटरनेशनल योग के दिन नहीं, हर समय हर पल लिंक्ड कनेक्टेड किसी न किसी रूप से। और बाबा को याद करना अर्थात केवल सुबह आत्मा समझकर बाप करना, याद करना यही नहीं है, सारे दिन भर में किसी न किसी रूप से याद करते रहना। जितना तुम आत्मा अपने आप को पक्का समझेंगे उतना बाप की याद पक्की रहेगी। कल की साकार मुरली तो या उसको शुक्रिया अदा करते रहना, या उससे बातें करते रहना, या सेवाओं में स्वयं को रोटी बेलते बेलते क्या करना है, हाथ रोटी बेले और मन क्या करे, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे। कितनी अच्छी बात बोल दी। तो रोटी बनाते बनाते बेलते बेलते क्या करना है, अंदर पांच स्वरूपों का अभ्यास, टीचर से मुलाकात। नीचे चली मुरली अभी अभी, क्या करो पांच स्वरूपों का अभ्यास, पांच पांच मिनट दिन भर करते रहो। फिर एक्सरसाइज बहुत काम की है, उमंग उत्साह में रहेंगे, उड़ती कला रहेगी और खुशी रहेगी सारे दिन भर, अगर ये अभ्यास होता रहा तो। तो पहला है संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव करना है। कभी वो रक्षक है, कभी वो कुछ है, तो कभी कुछ है, हर परिस्थिति में वो है, उसके साथ मैं हूं, उसने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं है, मैंने ही उसे बार बार छोड़ा है। दूसरा स्वभाव, स्व अर्थात श्रेष्ठ, स्व अर्थात आत्मिक भाव, सबके लिए आत्मभाव और श्रेष्ठ भाव। और हमारा स्वभाव कैसा है? जो बाप का स्वभाव शीतल, जो बाप का स्वभाव, जो उसके संस्कार वो हमारे संस्कार। तीन उसके संस्कार बताए बाबा ने, कौन कौन से? महादानी है वो, रहम दिल है, और विश्व कल्याणकारी है। हमें भी लक्ष्य रखना है, चाहे मुख से सेवा ना करे, चाहे स्थूल से ना कर रहे, परंतु मन निरंतर सेवा करते रहे। इसलिए बाबा ने कहा वृत्ति सबसे सहजते सहज सेवा, जो बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, हरेक कर सकता है, वो कौन सी है? दुआ दो, दुआ लो, और वृत्ति से वाइब्रेशंस और वायुमंडल निर्माण करना, ये सेवा। संसार में दो लोग रहते हैं और दोनों के स्वभाव में इतना टकराव रहता है और रोज के झगड़े। बाबा ने कहा तुम्हारा स्वभाव बाप समान है, रहम दिल, महादानी, देने वाला स्वभाव है। महावाक्य सुनते सुनते क्या बन गए हो? महान बन गए। और महान बनकर क्या करना है? तीन काम, महान कार्य करने हैं, मनसा वाचा कर्मणा दानी बनना है, महादानी, और तीसरा महान युग का आह्वान। पूरी रात भर बाबा बैठे हैं ओम शांति भवन में, सुबह हो गई है और फिर ये महावाक्य कहा कि सुनते सुनते क्या बन गए हो? महान। सुनते सुनते ही आत्मा की चेतना जागृत हो गई है, महान बन गए हो। तो दूसरा स्वभाव, अपने स्वभाव में जो कड़वाहट है, जो विष है, जो जहर है, उसको निकालना है। बाबा ने कहा वृत्ति कैसी हो तुम्हारी? शुभ। वृत्ति कैसी हो तुम्हारी? रूहानी। वृत्ति कैसी हो? श्रेष्ठ, शुभ भावना, शुभ कामना वाली। और यदि कोई तुमको बद्दुआ दे तो क्या करे? सात बातें करो। अभी अभी मुरली चली है नीचे। अगर कोई बद्दुआ दे तो क्या करो? सबसे पहला, जैसे तुम कोर्स कराते हो तो क्या कहते हो? निगेटिव को पॉजिटिव। अब किसका कोर्स कराओ? स्वयं का कोर्स। दूसरा चैलेंज, क्या चैलेंज देते हो? कि हम प्रकृति को भी बदलने वाले हैं, सतो प्रधान बनाने वाले तमोगुण से। अब ये चैलेंज अपने आप को भी दो, चाहे सामने वाली आत्मा जो बद्दुआ दे रही है कैसी भी हो। महाभारत में दिखाया है, गांधारी ने शाप दिया श्री कृष्ण को, तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? शिरोधार्य कर लिया, विरोध नहीं किया उसका। तीसरा, यदि कोई बद्दुआ दे तो क्या करो? उसको अंदर नहीं लो, क्योंकि तुम्हारा दिल क्या है? बाप का तख्त है, कोई किचड़ा यहां नहीं रखना है। जिसको देना है वो देने दो, अंदर नहीं लो। चौथा, जो भी संपर्क में आए उसको क्या दो? सहयोग दो, उमंग उत्साह दो, हिम्मत दो, दुआ दो। पांचवा, एक शब्द याद रखना बाबा ने कहा, दुआ। देना है और लेना है। अगला, मास्टर क्षमा का सागर बन जाओ, क्षमा कर दो उसको। माना उसकी बहुत बड़ी गलती है, पर हम मास्टर क्षमा के सागर है। और लास्ट, निर्वाण में भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निवारण मूर्त। क्या बन जाओ? निवारण मूर्त। ऐसी सात बातें कही है, अगर कोई बद्दुआ दे तो। निवारण मूर्त बन जाओ, मास्टर क्षमा के सागर बन जाओ, एक शब्द याद रखो दुआ, जो भी संपर्क में आए उसको स्नेह दो, सहयोग दो, उमंग उत्साह दो, हिम्मत दो, और अपने अंदर उसको लो ही नहीं। क्यों लेते हो? अगर कोई खराब चीज देते तो लेते हो क्या? अलमारी में फेंक देते हो, अलमारी में रख देते हो? लेना नहीं है, स्वीकार, अंदर लेना ही नहीं है उसको, क्योंकि तुम्हारा दिल क्या है? बाप का तख्त है। चैलेंज खुद को देनी है, कोर्स स्वयं का ही कराना है, सात काम करने हैं। अगर कोई बुरा कहे या कुछ विरोध करे, अंग्रेजी का एक लेखक है, उसने इतनी पावरफुल बात कही है कि यदि तुम्हें कोई, तुम्हारा कोई विरोध करे, निंदा करे, ग्लानी करे, अपशब्द बोले, तो क्या करो? से नथिंग, डू नथिंग एंड बी नथिंग। इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, क्या करो? कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना, ऐसे हो जाओ। से नथिंग डू नथिंग एंड बी नथिंग। यदि पता है कि ये जो बोला जा रहा है ये झूठ है, जितना सिद्ध करेंगे जितना बोलेंगे वो और भड़केगा। इसके लिए सभी विवादों को समाप्त करने की विधि क्या है? मौन। ना कुछ बोलना, सीन डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। तो पहला संबंध, दूसरा संपर्क, दूसरा स्वभाव। तो जैसा भगवान का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव बन जाए। रामायण में दिखाया लक्ष्मण उग्र स्वभाव का है, बार बार क्रोध आता है, बार बार ऐसे शब्द बोलता है जिससे झगड़े बढ़ते हैं, पर हर बार राम जी बीच में आते हैं। जल सम वचन बोले रघुनाथा, जल के समान वचन है शीतल। तीसरा संपत्ति, इनकम। तीन बातें कही यहां पर, क्या करते हो तुम इस इनकम से? एक तो खाते भोजन, दूसरा परिवार, और तीसरा तुमको क्या मिला है? नाम। तो तुम्हारे पास जो संपत्ति है, जो इनकम है, वो कैसी? अविनाशी कमाई है। संसार में जो कमाई है वो विनाशी कमाई है, ये जो कमाई है वो अविनाशी कमाई है। जितना भी मर्जी है खाओ। बड़ी सूक्ष्म बात बोली है, अंत तक क्या गुणगान है? बाबा तुमको क्या देगा? दाल और रोटी, और क्या नहीं देगा? आसक्ति वाला भोजन। पर वही तो चाहिए, दाल रोटी और उसमें अचार ही नहीं है। बाबा ने अचार के लिए तो कहा ही नहीं है, बाबा ने दाल रोटी की गारंटी दी है, पर दाल रोटी तो उससे हमारा तो पेट ही नहीं भरता, हमें तो कुछ और चाहिए, चटपट। तो दाल रोटी खाओ और भगवान के गुण गाओ, अर्थात अपने भोजन को मध्यम रखना है। तीन शब्दों का वर्णन है, एक है निरोग्य, तीसरा आरोग्य, और तीसरा, पहला निरोग, दूसरा आरोग्य, तीसरा स्वास्थ्य। तीनों में अंतर है। संसार की सारी चिकित्सा पद्धति जो कर रही है वो है निरोग, अर्थात बीमारी है अब उसको हटाओ, इसको कहते हैं निरोग। दूसरा है आरोग्य, आरोग्य अर्थात आरोगाना अर्थात खाना ही ऐसा खा रहे हैं कि जिससे बीमारी ना हो, तब प्राप्त होता है आरोग्य। अभी खाना ही ऐसा खा रहे हैं कि जिससे बीमारी ही बीमारियां हो रही है, इसके लिए निरोग तो बहुत दूर की बात। और सबसे ऊंचा शब्द है स्वास्थ्य, वो तो अध्यात्म की श्रेणी का आता है, मेडिकल साइंस उस तक अभी नहीं पहुंचा है, वो अभी आरोग्य और निरोग तक है। स्वास्थ्य अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, जहां पे आत्मा ही स्वस्थ है, अभी आत्मा रुग्ण है, विकारों ने रुग्ण कर रखा है उसको। तो तीसरा क्या बताया? धन। और धन से हमें परिवार प्राप्त है, धन से हमें नाम प्राप्त है। नाम के लिए क्या कहा? अभी तक तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा तुम्हारे नाम से लोग क्या कर रहे हैं? सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इस देवी की पूजा की तो वो सिद्धि मिल गई, उस देवता की पूजा की तो ये सिद्धि मिल गई। वशीकरण मंत्र, पति को वशीकरण करने का मंत्र, ऐसे ऐसे मंत्र है ना संसार में, पति को कैसे वश में किया जाए उसका अलग मंत्र, पत्नी को कैसे वश में किया जाए उसका अलग मंत्र, अलग अलग मंत्र है, एक एक देवी के अलग अलग मंत्र, एक एक देवता के अलग अलग मंत्र। बाबा ने कहा नाम तुम्हारा और काम उनका। तो संपत्ति, हमारी जो संपत्ति है वो इनविजिबल अदृश्य पैसा है हमारा, ये जो करेंसी है दिखाई नहीं देती है, पर सुबह सुबह कोई कोई एकदम मालामाल हो जाता है, एकदम बैंक फुल अकाउंट, और कोई कोई दिन भर लुट जाते हैं बेचारे, वो भी दिखाई नहीं देते जो लुट रहे हैं, और जो भर रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देते। कैसा अदृश्य खेल है ये, किसका सब कुछ लुट रहा है, किसे सब कुछ मिल रहा है, दिखता किसी का कुछ भी नहीं है। पर कोई आत्मा अतीन्द्रिय सुख से अंदर ही अंदर भरी है, और कोई आत्मा बाहर से तो हंसी चिपका के है चेहरे पर अंदर से दुखी है, उदास है, दर्द में है, पीड़ा में है बिचारी। सब कुछ मिला है, ब्राह्मण जीवन में चल रहे पर अंदर से अज्ञात सा दुख है। एक किस बात का दुख है उनको भी नहीं पता, पर दुख है जरूर। पर सब कुछ अदृश्य है, खेल ही अदृश्य का है। ये चेहरे पर दिखता है क्या, किसका आज ज्यादा योग लगा, कम लगा, सब कुछ गुप्त है। कौन योग लगा रहा है या सो रहा है आंखें खोलकर, दिखता थोड़ी है। चौथा है संपर्क। किसके साथ संपर्क है तुम्हारा? तुम्हारे संपर्क के लिए लोग क्या करते हैं? भगत लोग जागते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, जागरण जगराता जागरण करते हैं, सहन करते हैं, पूरी रात रात जागते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। किस लिए? तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। यह है संपर्क। और इस संपर्क की वजह से तुम क्या हो गए? सारे विश्व के हो गए, बेहद के हो गए। इस परिवार के संपर्क में आने से पहले अपने से छोटे से घर में और गांव में अभी कितनी वैरायटी आत्माएं हैं, कितने कहां कहां से लोग आए हैं और कहां कहां हम जुड़ गए, विश्व से जुड़ गए, विश्व परिवार, विश्व ग्राम बन गया है ये एक। पहले अपने ग्राम में थे, अभी विश्व गांव है ये हमारे लिए। सब अपने हैं। संसार में किसी भी सेवा केंद्र पर जाओ, वैसे ही बाबा का चित्र, वही बाबा का कमरा, अपनेपन का अनुभव है। तो खुशी के आधार ये चार चीजें हैं। एक पिता जो बहुत रईस है, सोचते हैं एक बार कि मेरा ये जो बेटा है ना, उसको भी पता चले कि उसको कितने सुख प्राप्त है और कितना वो खुश नसीब है, इतने वैभव में इसका जन्म हुआ है। गोल्डन सिल्वर स्पून इन माउथ, वो उसको ये जताने के लिए कि तुम कितने अच्छे हो और संसार में कितनी गरीबी है। अपने बेटे को ले जाते हैं गरीबों की बस्ती में शहर के बाहर, और वहां दो तीन दिन रहते हैं और वापस आते हैं, और अपने बेटे से पूछते हैं क्या तुमने सीखा बताओ, तंज करते हैं, क्या तुमने सीखा जरा बताओ। ये सोचकर पूछते हैं कि इसको लगेगा हाँ पिताजी हम तो कितने अच्छे, बेचारे वो गरीब लोग कैसे जीते हैं, खेत में कैसे रहते हैं वो लोग। तो वो बच्चा कहता है पिताजी हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास चार। पिताजी हमारे पास ट्यूबलाइट है, उनके पास सितारे। पिताजी हमारे पास आनंद है, उनके पास पूरा के पूरा खेत था। पिताजी हमारे पास नौकर है जो हमारे लिए काम करते हैं और वो दूसरों की सेवा करते हैं। वो बच्चा कहता है पिताजी हमारे पास ये दीवारें हैं जो हमारी रक्षा करते हैं घर की, उनके पास उनके दोस्त है जो उनकी रक्षा करते हैं। वो कहता है पिताजी हमारे पास ये पॉन्ड है, तालाब आर्टिफिशियल कृत्रिम, उनके पास तो बहते हुए झरने हैं। हाँ पिताजी आज मैंने जाना हम लोग कितने गरीब है और वो लोग कितने अमीर है, आज मुझे समझ में आया, अच्छा किया आप लेके गए। उल्टा हो गया, दृष्टि कैसी है किसकी, कैसे हम चीजों को देख रहे हैं। हमें लगता है हम बहुत ही दुखी है, ये जो बाजू वाला है ये हमसे सुखी है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये जो बाजू वाला डिपार्टमेंट है ये थोड़ा ठीक है, हमारी जो टाइमिंग से सेवा की उनसे ये जो बाजू वाला है इसके टाइमिंग ठीक है थोड़े। खुशी का आधार बाहर की कोई भी वस्तु नहीं है, खुशी आंतरिक अवस्था है। और खुशी का यदि आधार है तो ये चार बातें, भगवान से सारे संबंध, अविनाशी कमाई, स्वस्वभाव में स्थित और संपर्क इस परिवार के साथ, बाप के साथ, जो हमें बेहद में उठा देता है। तो ये चार बातें बाबा ने कही मुरली में। और जैसे कहा, रात भर मुरली चली, सुनते सुनते क्या बन गए, महान। वो दिखाया है महाराष्ट्र के संत रामदास, उनकी शादी हो रही होती है और अंदर से इतना वैराग, और जैसे ही सुनते हैं शुभ मंगल सावधान शादी में, वो पंडित जी कहते हैं शुभ मंगल सावधान, तो एकदम रुक जाते, सावधान क्यों का, जरूर कोई डेंजर है, और शादी के मंडप से ही भाग जाते हैं, तो फिर वापस कभी नहीं आते। सुना और जागरण हुआ। बाबा कहते हैं सुनते सुनते तुम महान बन गए हो, अब महान युग का आह्वान करते हो, महान कर्तव्य करने वाले बन गए हो, और तीसरा मनसा वाचा कर्मणा महादानी बनने के अधिकारी बन गए हो। कैसे बना? सुनने से, श्रवण मात्र। तो अपने कानों को थोड़ा बड़ा करना है ताकि भगवान की कही हुई एक भी बात छूटे ना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुलसीदास ने लिखा है भगवान की कथा सुनने के लिए वो अनन्य भक्त, वो अनन्य आत्माएं, ऐसी प्रेमी आत्माएं जो भगवान का एक भी महावाक्य छोड़ना नहीं चाहती, जिनके श्रवण कान समुद्र की तरह है, सब कुछ अपने अंदर समाना चाहती है, ऐसे बन जाओ। तो चार आधार, युगलों से मुलाकात, क्या कहा, उड़ो, फंसना नहीं है व्यक्ति में, वैभव में, पदार्थ में, वस्तुओं में, किसी में भी नहीं। जरा भी बंधन क्या कर देगा, फंसा देगा। ऐसा लगेगा थोड़ा है, पर थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा। इसके लिए जहां लगे कि मन कहीं व्यक्ति में बंध रहा है, तुरंत उसको मुक्त कर देना है वहां से। और कोई भी चीज उसको बांध सकती है, अच्छे से अच्छी चीज भी उसको बांध देती है। बंधन बंधन है, चाहे लोहे का या सोने का। लोहे का तो फिर भी तोड़ देते हैं, परंतु सोने का कैसे निकाले इसको, उसमें हीरे जड़े हुए हैं। लोहे को तो तलवार निकाला और काट दिया, फेंक दिया उधर, पर ये इसका क्या करे, सोना ही सोना है, कैसे निकाले उसको। नहीं तो लगता है बाद में काम आएगा, अभी रखते हैं थोड़ा सा, मैं बाकी सबसे वैराग है, पर ये जो दो लोग हैं ना इनसे मैं थोड़ा रखूंगा, ये जो एक है ना ये मुझे चाहिए, थोड़ा इमरजेंसी में काम आ सकता है, इसको रखता हूं। बाकी नष्टो मोहा सबसे है, ये एक अलग। तो बाबा ने कहा निर्बंधन, स्वतंत्र, न्यारे, बंधन मुक्त, यही सेवा कर सकते हैं। दूसरा बात की बाबा ने अधर कुमार, क्या कहा उनको, अधर कुमार को क्या कहा, लगन में मगन, ममता खत्म करो। एक बाप की लगन में मगन रहेंगे तो ममता समाप्त हो जाएगी, मेरापन समाप्त हो जाएगा। दादी प्रकाशमणि ने एक बार युगलों की भट्टी में बहुत ही अच्छी बात कही थी, कहा था कुमारों के लिए भी कहा था और युगलों के लिए भी। कुमारों के लिए पहले कहा, कुमार अपने आप को ये समझे कि मैं बाबा की सजनी हूं, ताकि किसी का साजन बनने की इच्छा ना हो, फिर खुद ही सजनी हो, अब किसका साजन क्या बनोगे। दूसरा जो युगल है भाई अतर कुमार, वो ये समझे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं पति नहीं हूं। पति समझेंगे तो रोप झाड़ेंगे, फिर क्या समझो, मैं बच्चा हूं ये समझो। पति समझना ही नहीं है किसी का, ना ही किसी की अपने आप को पत्नी समझना है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं और ये भी शिव बाबा का बच्चा है युगलों के लिए। तो यहां पर बाबा कह रहे हैं अधर कुमारों से मुलाकात, लगन में मगन, शुद्ध बाबा शुद्ध है तो तुम्हारा ये मोह बदलकर क्या हो जाएगा, प्रेम बन जाएगा। युगलों से मुलाकात, फिर माताओं को क्या कहा बाबा ने? रोटी वाली बात या नहीं है, माताओं को क्या कहा? निरंतर झूले में झूलते रहो, मोह सताता तो नहीं है? क्या पूछा? मोह सताता तो नहीं है? मोह बहुत दुख देता है, जिसमें मोह है उसको कुछ हुआ तो इधर कुछ होता है, उसी की याद, उसी के ख्याल, सब कुछ उसके लिए चालू रहता है, सारी खूबियां उसमें नजर आती है, उसके लिए कुछ कहते कोई तो अच्छा नहीं लगता है। मोह में फंसी आत्मा, इसलिए बाबा ने कहा मोह सताता तो नहीं है, नष्ट मोह बनी है। पहले हम व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं और व्यक्ति फिर हमें फंसा देता है। जैसे एक व्यक्ति, उसने देखा एक कंबल है नदी में, कूद जाता है कंबल लेने के लिए और उसके बाद में वहीं रहता है। लोग कहते बाहर निकलो, वो कहते निकलू कैसे, अब ये कंबल ने मुझे पकड़ लगा है। वो कंबल है नहीं, वो भालू है, वो जो दूर से काला काला दिख रहा था, अब इसने मुझे पकड़ रखा है। मोह भी ऐसा है, पहले मोह के पास हम जाते हैं और फिर मोह हमको पकड़ता है। अब हम छूटना चाहते फिर भी नहीं छूट पाते, क्योंकि अब उसने मुझे पकड़ रखा है। व्यक्ति का एडिक्शन हो जाना ये मोह है। इंग्लिश में कहावत है, एट फर्स्ट मैन टेक्स ड्रिंक, देन ड्रिंक टेक्स ड्रिंक, एंड देन ड्रिंक टेक्स द मैन। सबसे पहले व्यक्ति दारू पीता है और फिर दारू दारू को पीती है और फिर लास्ट में दारू व्यक्ति को पी जाता है। इधर भी ऐसा ही है, व्यक्ति की तरफ आकर्षण और वो हमको खींचता रहता है, फिर उसी में बंध जाती है आत्मा। और जो बंधन में है वो कभी भी सेवा नहीं कर सकते। बाहर से दिख रहा है सेवा कर रहे, परंतु जौहर नहीं है उसमें, क्योंकि अंदर में फंसे है किसी में। उसके बाद में सेवाधारियों से मुलाकात, क्या कहा? एक साथ दो सेवाएं करो, डबल सेवा डबल प्राप्ति। इधर वाचा से सेवा या मन स्थूल सेवा कर रहे हो, साथ साथ सूक्ष्म सेवा करते रहो, दोनों सेवाएं साथ साथ चलती रहे। इसलिए कहा रोटी बेलते बेलते क्या करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। और जितना योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे उतनी असंख्य ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति ऊपर उठ जाएगी और उनकी सूक्ष्म दुआएं हमको प्राप्त होगी। तो ऐसे चार ग्रुप थे। डबल फॉरेनर्स से भी बात की बाबा ने, क्या मिला है उनको? पहचान का शक्तिशाली नेत्र। ये केवल उनके लिए नहीं है, अपने लिए, हमारे लिए भी। पहचान का शक्तिशाली नेत्र खुला हो, जो देख ले व्यर्थ क्या है समर्थ क्या है, जो देख ले ये संबंध मुझे डुबो रहा है इससे मुझे बाहर निकलना है, जो देख ले यहां टाइम वेस्ट हो रहा है, जो देख ले ये सब मुझे करना ही नहीं है, बाबा ने मना किया इनके लिए फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं, जो देख ले इस जीवन का लक्ष्य क्या है। संडे जो मुरली नीचे चली, क्या कहा बाबा ने? लक्ष्य लक्षण एक करो, डेट फिक्स करो, अपने पुरुषार्थ में स्वयं की चेकिंग करो कि निरंतर तीव्र पुरुषार्थ हो, और एडिशन किसकी करो तीव्र पुरुषार्थ में? दृढ़ता की एडिशन करो। तो ये एडिशन करो उसमें। तो ऐसी आज की जो मुरली है इसमें बाबा ने कितनी सारी बातें कह दी, छोटी छोटी बातें, यहां वहां थोड़ी थोड़ी करके कितनी सारी है। तो सुनते सुनते महान बन जाना, ऐसे सुनते सुनते महावाक्य, सुनते सुनते महान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे रोटी बेलते बेलते सदर्शन चक्र फिराने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, विशेष आत्माओं को, ऐसे 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 पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को, हर कदम में पदम प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वभाव बाप समान बनाने वाली आत्माओं को, संस्कार बाप समान वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे डबल सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे जिनका पहचान का तीसरा नेत्र खुला है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे निर्मोही आत्माओं को, नष्ट मोह आत्माओं को, ममता को समाप्त करने वाली आत्माओं को, निर्बंधन आत्माओं को, उड़ने वाली आत्माओं को, न्यारी आत्माओं को, ऐसे प्यारी आत्माओं को, ऐसे महान युग का आह्वान करने वाली आत्माओं को, ऐसे तीनों प्रकार की सेवाएं करके महादानी बनने वाली आत्माओं को, ऐसे रहमदिल आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस, मधुबन लाइट हाउस है, मधुबन को भी याद किया बीच में, ऐसी अनन्य आत्माओं को। तो कितने सारे समान, कितनी सारी बातें मुरली में है। तो ऐसी सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।